Good morning to all of you. मुझे एक बार दादी गुलजार ने कहा था, कहो पूछा था, डॉक्टर जी आपको बाबा ने ढूंढा या बाबा ने आपको ढूंढा। उस समय मैं ज्ञान में कुछ नया नया आया था, मैं समझा कि कुछ गुह्य प्रश्न पूछा गया है, लेकिन उसका जवाब मैं नहीं दे पाया। और जैसे इस मुरली को पढ़ते हैं तो बाबा ने वही प्रश्न पूछा है कि आपको बाबा ने ढूंढा या आपने बाबा को ढूंढा। अब तो सबको शायद वो जवाब मालूम है, बाबा ने हम सबको ढूंढा है, हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए। लेकिन उस समय मैं लौकिक में ज्यादा था तो मुझे लगता था इसके अंदर कुछ इमोशंस है, कुछ भाव है, कि हम सब ऐसा ही कहते हैं कि भगवान ने हमें चुना, लेकिन क्या रियली भगवान ने हमें चुना है? क्या रत्नाकर बाप ने हम सौदागर बच्चों को चुना है? हम तो सौदागर, ऐसे सौदागर हैं, हमें क्या मिलेगा? ये प्रश्न हमेशा रहता है। कैसे भी निस्वार्थ सेवा की आप बातें सुने या करें, लेकिन यदि अंदर झांक के बहुत गहराई में देखें तो शायद कहीं ना कहीं छोटा सा स्वार्थ छुपा हुआ है। आखिर में बाबा जब सौदा की बात करते हैं तो वो 21 जन्म की कमाई की बात करते हैं, 21 जन्म की स्वर्ग की सुख की बात करते हैं, तो वो भी तो थोड़ा सा स्वार्थ हुआ या नहीं हुआ? सबसे बड़ा स्वार्थ। तो ऐसे तो बाबा कहता है आपने बहुत बड़ा सौदा किया, सच है, पर बाप तो रत्नाकर है, विशाल। विशाल कहना भी ठीक नहीं है, अगाध, जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम। चाहे हम आकाश की बात करते हैं, जहां सीमा रहित है, सीमा हमारे मन की है, हमारी सोच की है। तो मैं समझता हूं हमने भी जो सौदा किया है, सौदागर बच्चों ने, ये किया तो जरूर है, लेकिन क्या जो बाप जो सौदा कहते हैं वो हमने किया है? तन मन धन संबंध संपर्क सब क्या हमने बाबा को समर्पित किया है? शायद आगे गहराई में जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने हमारे पास जरूर रखा है। ये जो बाबा की बातें हैं संपूर्ण समर्पण की, और फिर जाके बाप समान बनने की, बाप समान बनने के स्वप्न सबको होता है और होना ही चाहिए। जब बाबा के पास आए तो शायद उस टाइम मालूम नहीं था कि बाप समान बनना क्या है, लेकिन एक तो जरूर था कि हमें बदलना है। हमें बदल के क्या होना है, उसकी रूपरेखा शायद कई कई कोई थी, और मेरी तो नहीं थी, ये तो मैं जरूर कहूंगा। मैं तो एक यात्रिक था, यात्रा पर था, ढूंढता था। और यात्रा में बहुत मजा आती थी, जो हम ऐसे कहते हैं ना, जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन, यू मस्ट एंजॉय द जर्नी। तो मैं उस स्टेज के पे था जहाँ मुझे घूमना, यात्रा करना अच्छा लगता था। शायद बाहर की दुनिया में भी ऐसा था, अंदर की दुनिया में भी ऐसा था। बाहर की दुनिया में हम घूमते हैं, सब जाते हैं यात्रा के ऊपर। आजकल यज्ञ में आप किसको भी पूछो तो कहेगा मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, रशिया जाता हूँ, यूरोप जाता हूँ सेवा के लिए। हम घूमते थे उस समय विज्ञान के डॉक्टर के हिसाब से, जहाँ भी कोई एकेडमिक मीटिंग होती थी हम चले जाते थे। अंदर की यात्रा भी चालू थी। वो अंदर की यात्रा, डेस्टिनेशन पता नहीं था। जरूर एक चीज थी, भगवान को ढूंढना, मगर भगवान मिल गया वो भी पता ना चला। आप जब यात्रा पे निकलते हैं तो शायद कुछ देखने जाते हैं, कुछ एंजॉय करने जाते हैं। हमें भी ऐसा आनंद होता था परमात्मा के बारे में चिंतन करने से, परमात्मा के बारे में सुनने से, परमात्मा के कुछ महावाक्य सुनने से। उस समय पता नहीं था कि महावाक्य परमात्मा ने कहा है। जब जगदीश भाई की पुस्तकें पढ़ी और मुरली के बारे में कुछ न कुछ पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा कि मुरली वो ईश्वर का आवाज है, ईश्वर के स्वयं के सीधे शब्द है। कहीं कहीं इस जगदीश भाई ने बहुत सुंदर कहा, कहीं कहीं बाबा के अनुभव भी अंदर है, उनका चिंतन भी, पर वो बहुत छोटा है। शायद बहुत करके शब्द तो सीधे थे शुरू शुरू में, जैसे कहा बाबा, ब्रह्मा बाबा सुबह में 2 बजे उठ के मुरली लिखते थे और फिर सबको भेजते थे, उसके बाद में पढ़ते थे। और अब जब हम आए तो हमने तो अव्यक्त बाप दादा को ही देखा। तो ये जो बाबा के महावाक्य हैं, मुरली, उनको उन्होंने बहुत सुंदर कहा, ईश्वर के वचन मुरली ज्ञान की बंसी, मनुष्य मन के जागृत तथा आनंदित करने निकलते हुए शब्द। दो चीज हमें जागृत करने के लिए और आनंदित करने के लिए, खुशी देने के लिए। लेकिन बाबा के जो महावाक्य होते हैं बहुत गुह्य होते हैं। तो जब हम सचिन भाई को सुनते हैं तो उसकी गुह्यता के अंदर हमें प्रवेश करने का मौका मिलता है। और विश्व के अनेक चिंतनकार के बारे में बाबा के गुह्य शब्दों से कैसे मिलावट करते हैं उसका बहुत अच्छा अनुभव होता है। बाबा के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, ईश्वर एक आत्म ज्योतिर्मय, ये शब्द मैंने पहली बार जगदीश भाई के लेख में पढ़ा। निराकार सर्वाधिक हितकारी, और वहां शब्द व्यक्ति वापरा है इन्होंने परमात्मा के लिए, हितकारी व्यक्ति, मानव जाति को सुपंथ पर चलाने, मानव इतिहास के क्रांति काल में मानवीय माध्यम पर अवतरित होता है, उससे मुख से बोलता है। ये जो बातें हैं बहुत सुंदर है कि बाबा जब हम पहले कभी सोच नहीं पाते थे कि परमात्मा भी बोल सकता है, लेकिन हम सबका अनुभव और हम सबका भाग्य सद्भाग्य है कि हमें ऐसा रत्नाकर मिला जिसके मुख से हमने ये सुंदर मुरलियां सुनी। और जब मैं शुरू शुरू में मुरली सुनने आता था अव्यक्त बाप दादा की, तो ग्रास्प करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि बाबा की जो वाणी थी जब चलती है तब बहुत ख्याल रख के पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शब्द मिस हो जाते थे, और थोड़े शब्द मिस हो जाते थे तो शायद उसकी कंटिन्यूटी भी मिस हो जाती थी। तो मैं समझता हूँ परमात्मा वाक्य परमात्मा मुख से निकले हुए हमने सुने और उसके बारे में बहुत चिंतन किया, और ये जो अव्यक्त वाणियां चली उसके अंदर हमें बहुत अंदर झांकने का मौका मिला। मैं समझता हूं कि हम सबका सद्भाग्य रहा है कि हमको ऐसा रत्नाकर रत्नों का सौदागर मिला, और सौदा हमने किया, लेकिन जो रत्न हमें मिले ये बहुत अमूल्य, अमूल्य भी कहना कम है। बाबा स्वयं हीरे का व्यापारी था, उनको जब हम निर्मल शांता दादी से मुख से सुनते थे उनके बचपन के, तो कहते थे कि बाबा बहुत प्यार से हमें लगता था, बहुत मीठा था, कभी गुस्सा तो करे क्या ही नहीं, लेकिन कभी कभी हम बड़े बड़े हीरे थे हमारे घर के अंदर तो उससे हम खेलते थे। बाबा कुछ भी ज्वेलरी बनाता था तो पहले लाके निर्मल शांता दादी को पहनाता था। एक अजीब कि बाबा जो रत्नागर का सब्जेक्ट बना वो खुद भी रत्नाकर था। तो हम सब शायद हमें रत्नों का अनुभव नहीं था, हम शायद रत्नों से खेले नहीं, रियल रत्नों से जो निर्मल शांता दादी खेली थी, लेकिन बाबा ने हमें यहां बहुत सुंदर रीत से रत्नों के झूले में झुलाए, रत्नों से खिलाए, खेल किया, और हमें रत्नों से हमारा जीवन को भर दिया। मैं समझता हूं कि मुरली के ऊपर दो दिन के पहले कल बहुत चिंतन हुआ है, तो मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता, खाली इतना ही कहूंगा कि हमें बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो इतना, हम जो मूल को जान लिया बाबा ने कहा, बेसिक समय सिखाया गया है और सब विस्तार में जा रहे हैं। हम सबको विस्तार अच्छा लगता है, लेकिन मूल को पकड़ के रखना, मूल के अंदर रहना, मूल के अंदर हमारा चिंतन करना, ये बहुत अगत्य का है। एक चीज कि ये जो ज्ञान बाबा ने हमको दिया है, ज्ञान रत्न हमको दिए हैं, उसके ऊपर हमें आत्मचिंतन ज्यादा करना है, बोलना कम है। बोलना भी बहुत अच्छा है, लेकिन जिसके पास वो गहराई का आत्मचिंतन हो और वो हम सब में बांटें तो बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। थैंक यू।